SBS हिंदी। ब्रिटेन के जेमी कॉर्बिन लेबर नेता के रूप में हटने को तैयार और बोरिस जॉनसन ब्रिटिश चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर। न्यूजीलैंड बचाव दल ने फाकरी से 6 मृत लोगों के अवशेषों को निकाला और भारत में नागरिकता संशोधन बिल अब बना कानून। और लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को औपचारिक तौर पर जीत मिल चुकी है और चुनाव में 86 सीटों पर बहुमत हासिल करने का स्पष्ट अनुमान है। उन्हें अगले महीने ब्रेक्सिट के लिए संसद में बहुमत की आवश्यकता है। एग्जिट पोल संकेत देते हैं कि 650 सीटों वाली संसद में एक बहुमत के लिए कंजर्वेटिव 368 सीट जीतेंगे और इससे भारी 86 सीटों का बहुमत मिलेगा। श्री जॉनसन की यह जीत 31 जनवरी को यूरोपियन संघ में ब्रिटेन की 46 साल की भागीदारी को समाप्त कर देगी। ब्रिटिश चुनाव में अपनी पार्टी के इस विनाशकारी प्रदर्शन के बाद लेबर नेता जेमी कॉर्बिन का कहना है कि वो इस पद से हट जाएंगे और तभी तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक लेबर एक नए नेता का चुनाव नहीं कर लेती। श्री जॉनसन ने कहा कि परिणाम ने सरकार को ब्रेक्सिट प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली जनादेश दिया है।
I want to thank the people of this country for turning out to vote in a December election that we didn't want to call, but which I think has turned out to be a historic election that gives us now in this new government the chance to respect the democratic will of the British people, to change this country for the better, and to unleash the potential of the entire people of this country.
उधर अपनी ही सीट पर जीत की घोषणा पर बोलते हुए श्री कॉर्बिन का मानना था कि अभियान के दौरान लेबर की सामाजिक न्याय नीतियां लोकप्रिय थीं और कहा,
However, Brexit has so polarized and divided debate in this country, it has overridden so much of a normal political debate. And I recognize that has contributed to the result that the Labour Party has received this evening all across this country. The issues of social justice and the issues of needs of people will not go away.
एक विशेषज्ञ न्यूजीलैंड बचाव दल ने इस सप्ताह के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फाकरी से 6 मृत लोगों के अवशेषों को निकाल लिया है। ये शव 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर क्रेटर के कोई 300 मीटर की दूरी पर छोटे समूहों में पाए गए थे। मोटे सुरक्षात्मक कपड़े पहने हुए रक्षा बल के जवान इस मिशन पर निकले थे। न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर माइक बुश का कहना है कि शेष शवों की तलाश जारी रहेगी जो शायद पानी में हो सकते हैं।
Unfortunately, there remains two more people that we need to find so we can also return them. So this operation will continue. We will, and we are this afternoon, returning with an aerial search of Whakaaro to see if we can identify anyone else on the island. And we are also right now deploying our dive team to search the surrounding waters.
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंटा आर्डन ने विशेषज्ञ बचाव दलों के काम की प्रशंसा की है। सुश्री आर्डन ने कहा कि बचाव मिशन के लिए काफ़ी बहादुरी की आवश्यकता थी, लेकिन ये एक ऐसा काम भी था जिसे पीड़ित परिवारों के लिए करना आवश्यक था।
We know that reunification won't ease that sense of loss or grief, because I don't think anything can. But we felt an enormous duty of care as New Zealanders to make sure that we brought their family members back.
इस बीच इस आपदा में बुरी तरह से घायल 8 न्यू साउथ वेल्स के लोगों का इलाज सिडनी के कॉनकॉर्ड और रॉयल नॉर्थ शोर हॉस्पिटल्स में चल रहा है। 3 अन्य लोगों का इलाज मेलबर्न के एल्फ्रेड अस्पताल में चल रहा है। जेटस्टार ने अपने कर्मचारियों की वेतन, नौकरी पर न्यूनतम घंटे और सुरक्षा में सुधार की मांग को ठुकरा दिया है और परिणाम स्वरूप जेटस्टार के लोगों ने रोलिंग स्ट्राइक के चलते आज पहले दिन का बंद किया है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैंस और एडिलेड के हवाई अड्डों पर आज अलग अलग समय पर सामान रखने वाले हैंडलर्स और ग्राउंड स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के सचिव सैली मैकमैनस का कहना है कि जेटस्टार और मूल कंपनी क्वांटास लालची बन रहे हैं।
They're very profitable companies, but they won't give their workers a pay rise that keeps up with the cost of living. And this is just wrong. It's just basically wrong. They are able to afford their executives millions of dollars in bonuses, but not able to afford 80 cent increase for these workers.
जेटस्टार का कहना है कि हड़ताल की कार्यवाही से प्रभावित यात्री अपनी उड़ानों को बदलने या रिफंड प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस बीच एक नए एंटरप्राइज समझौते पर बातचीत टूटने के बाद जेटस्टार पायलट्स कल शनिवार और रविवार को 4 घंटे के लिए काम बंद कर देंगे। पायलट्स ने 3% वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन पायलट थकान को कम करने के लिए रोस्टर में बदलाव चाहते हैं। जेटस्टार का कहना है कि इस अतिरिक्त क्लेम से 15% की वेतन वृद्धि होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फेडरेशन ऑफ एयर पायलट के कार्यकारी निदेशक साइमन लूटन का कहना है कि एयरलाइन गैर वेतन दावों की लागत को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है।
They've invented a mythical 15% cost increase and they're circulating that as the reason why they've not been able to reach agreement with us. And nothing could be further from the truth. We're ready, willing, and able to negotiate. We do not accept that it's 15% difference between us. That's a product of flawed costings by the company.
भारत में संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब नागरिकता संशोधन बिल कानून बन गया है। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद अब इसके प्रावधान को देश में लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। एनडीटीवी के समाचार के अनुसार नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम और त्रिपुरा में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों का असर यातायात पर पड़ रहा है। असम के 4 इलाकों में सेना को तैनात किया गया है। मेघालय में भी विरोध जारी है, जबकि शिलांग को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्से नागरिकता संशोधन बिल के दायरे में नहीं आएगा। शिलांग में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट और एसएमएस पर रोक है। और भारत दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में कल गुरुवार शाम को हुई भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने की भी खबरें हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी, मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस सकते हैं। अधिकारियों की माने तो पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की गिरफ्त में है। आने वाले दिनों में देश के उत्तरी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान भी है और मौसम अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते प्रदूषण से राहत मिल सकती है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 69 सेंट और भारत के 48 रुपये 91 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने की बोली लगाई है। यदि बोली सफल होती है तो ये पहली बार होगा जब इस आयोजन को दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित किया गया है। सभी 6 ऑस्ट्रेलियन राज्यों के स्थानों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सिडनी के ओलंपिक पार्क में 75,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में फाइनल मैच को रखा जाएगा। मटिल्डाज के खिलाड़ी स्टेफ कैटली का कहना है कि दोनों ही देशों में अद्भुत वेन्यूज हैं और खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।
I think there's something with New Zealand and Australia where we have a really warm, open culture from both countries that can welcome anybody, and it would be an absolute dream come true for me to play in front of family and friends. And my dad's side's from New Zealand as well, so I feel like I have a good a bond with both.
और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बहुत अधिक गर्मी रहेगी, धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में धुआं छाया रहेगा, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम 22 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें और तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।